ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्ज़ाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्ज़ाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखती, यू नो, मेरी पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्ज़ाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है कि, क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेम्बर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज़्यादा चली जाती है। बहुत सारे सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल ऑल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्ज़ाम है घर के अंदर, इसलिए भी एग्ज़ाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज़ स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably you know don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally,
or in fact wo hit to kar raha hoga lekin wo different you know direct nahi kar raha hai, is par hum baat karenge. lekin isme jo kal baat jo pichli kadi mein nikal ke aayi thi wo tha wo formula, you know, agar hum stress ki baat karte hain to stress is equal to pressure upon my inner strength, you know, so मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
अच्छा, और पिछले
ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम
में हुआ भी है चेंज।
सो यू सी फोकस सारा किस पर है, विच इज़ ओके, डू लेट्स डू वट एवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूँ तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा अटेंशन दे देते। तो राजयोगा जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा
स्पीड
से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटीसिपेटिंग, यू नो, कि क्या क्या हो सकता है।
नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो
अपने अंदर, यू नो, लाइक अपने अंदर।
नो, सी अगेन, ये कैसे वर्क नहीं करेगा। जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब, विच इज़ ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक. सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है. मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया.
एग्जैक्टली, इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट सो, इट इज डिजास्टर. एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियाँ वही हैं, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा
है. शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है. तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, यू नो, बच्चे तक? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए. तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल, दिस इट सेड कि मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
हम रिलैक्स करने के लिए, इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें, हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस के डेफिनेशन किस पर रखे थे, 95% मार्क्स, तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज़ अ फेलियर. एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है. व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, यू नो, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड. जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है. अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉरपोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ लुक्ड फॉर. गो 20 ईयर्स बैक एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है. क्यों? देर इज़ अ शिफ्ट ना, कि ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल हैं. तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा. हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है. हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते. यू नो, अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन वट एवर हैपन्स आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो.
आई डोंट थिंक देयर इज एनी पेरेंट जो ये नहीं कहता होगा.
नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई विल बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा.
सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी. मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो. और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करो,
सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी. सी, बोलने वन थिंग इज़ कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कन्वर्सेशन है, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको यू नो रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो, लेकिन क्या हमारी सोच वही है, हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हुज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के. हाँ, एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता, कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे. तो आई जस्ट थॉट के वी विल मीट हर फादर. तो उनके फादर से मिले तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट. ही से तो आपका क्या मतलब है, नहीं बोलूँ नहीं बोलूँ उसको पढ़ने के लिए, 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ
आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का. अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया एंड इफ शी डजंट क्लियर देन वॉट, बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट, बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था. आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट, कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए.
प्रेशर यू नो अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इफ वी आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू इज कि डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में. हम उन्हें मशीन बना देते हैं. आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ. उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT में एडमिशन के लिए. अभी 12th में तो वो बाद में आएगा 2 साल बाद, वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है. हर रोज़ का उसका स्केड्यूल है. उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है. तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पर लगाया है. आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज़ वॉट माई यू नो सन वॉन्टेड. बट डू वी रियलाइज हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
ट्रू.
व्हाई डू वी गेट अंडर दिस प्रेशर आल्सो?
ऑफ कोर्स, अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफ कोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर देमसेल्फ्स. उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें. क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक,
शिवानी एक्चुअली, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं. आई थिंक टुडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है, जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफस्टाइल हो चुका होता है. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
नो, सी वॉट हैपन्स, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है, लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि 1 साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस 1 साल पर तुम्हारी पूरी जीवन यू नो निर्भर करती है. हमने ये नहीं सोचा हमारी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं. इवन देन इफ़ दिस 1 ईयर हैज़ एवरीथिंग, put in your best, whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा. कि physically तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर ourselves, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर ourselves, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं, कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो
आना है.
अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे. क्योंकि वो हर दिन दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देर इज़ जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं. वो अटैचमेंट, वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाई चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
नहीं, यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं.
ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फेयरफुल थाट्स, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाले थाट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज़ सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट्स से शुरू करे, मेहनत इज़ नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस
पकड़ के आप चल रहे हो, यू नो वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, ज़रूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, वांटेड और एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट इन क्लास, शी कमिटेड सुसाइड. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं
और वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो.
इट वाज जस्ट ओवर. तो हियर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो. क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, यू नो फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग. जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ, यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए. मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस अप विद इट, एंड देन वी कम अक्रॉस डिप्रेशन, स्टूडेंट्स गोइंग टू डिप्रेशन, नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन अनहर्ड ऑफ, स्टूडेंट लाइफ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन अनहर्ड ऑफ. लेकिन आज क्यों? क्योंकि प्रेशर्स बहुत बढ़ते जा रहे एंड कोपिंग स्किल कोई सिखा नहीं रहा, कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें, कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है, सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन
जब तक नहीं. अगेन एंड अनदर थिंग व्हिच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूँगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, इवन ऑफिस में, मतलब अगर मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूँगा, कंपटीशन नहीं क्रिएट करूँगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूँगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा,
परफॉर्मेंस. अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर, फियर, और हम फियर को यूज़ कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, यू नो फियर इज़ अ मोटिवेटर. तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी, तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए, इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे, आप देखेंगे कि सब की, यू नो, जस्ट थिंग्स टू, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वो कहेंगे गलतियां तो निकालनी चाहिए, क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट.
दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो. You know, we've stopped appreciating them because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे.
What we have to understand is energy का खेल है सर. Appreciate करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है. पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है. पॉजिटिव एनर्जी हमेशा empower करेगी. And critical हो जाएंगे बात बात में, और वो भी इस इंटेंशन से. क्रिटिसाइज़ करेंगे ना तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं. तो अगर वो हमारे काम में गलतियाँ निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ये बिलीफ सिस्टम है, कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगर बॉस ने आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया, फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया, तो चलो व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट. वेरी वेरी, what to say, call it wrong or what, this belief system
doesn't
needs to
work.
Be checked.
Actually, it is not working.
It doesn't work. क्योंकि जहाँ कोई मेहनत कर रहा है और आप जाकर उस पर critical हो जाते हैं, आप तुरंत उसकी energy को, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ, यू नो, इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए. लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से.
पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो.
हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करे. बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट. आपको फीडबैक देना है, येस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट. लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना. दोनों में बहुत फ़र्क है. इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है. आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो, आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो. तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे. हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है. जो काम करने वाला है, ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा. हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज़ टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर. काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा. जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रही होती हूँ ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियाँ होने लगती हैं. एंड फिर वो गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई. लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं. और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस, यू नो, इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम. एंड यू नो, मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा.
लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ, किसी के साथ भी अगर हम ले, तो यू नो, इनका सर चढ़ जाता है. हमसे ये शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज़ समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज. लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या यू नो लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे. ज़रा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे.
चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं. क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे. अच्छा, मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे. क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
नहीं,
कभी भी नहीं. एंड
भले मैं तो अच्छा था,
सारे ही अच्छे होते हैं ना. नहीं, सारे ही वैसा करते. वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं. एवरी वन लाइक्स लव, एवरी वन लाइक्स सपोर्ट, एवरी वन लाइक्स कंपैशन. कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार, हाँ, ये होता क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की. इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए. लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है. भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा. एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि देन यू नो देयर इज़ द राइट एनर्जी फ्लोइंग. अभी देयर वाज़ नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. आप किसी को क्रिटिसाइज करो, फिर वो आपसे नफरत करे, तो यू नो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर, नॉट वेरी गुड एनर्जी. लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट, एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो. हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हम हमें अपनी लगती है. यू नो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क. आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील, यू नो, ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क. आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़ कर आते हैं. योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क. वाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर. फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा. और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी से कोई गलती होगी वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें.
एंड फिर गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि डर नहीं होगा ना. ऑफ कोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है.
डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता. गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपा कर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं. अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूँगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से. ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला, मेरा और उस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ. होल एनर्जी फ्लो गेट्स अफेक्टेड. एंड अगर ट्रांसपेरेंसी है, आई कैन से यस, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई, एंड इट्स फिनिश्ड.
और समवेयर यू नो मेरी कभी इंटेंशन थी नहीं ना, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे कि हाँ ठीक है, मैंने इंटेंशनली नहीं किया. अगेन अमेजिंग, हमने बच्चों से शुरू करके आज बात जो है, और स्ट्रेस को हमने जब ये देखा कि जब जितनी मेरी इनर स्टेबिलिटी, मेरा इनर रेजिस्टेंस पार बढ़ता जा रहा था, वो जो स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता है. इनफैक्ट जिसको हमने नॉर्मल मान के, जब हमने कहा कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो यहाँ ये समझ में आया है कि स्ट्रेस जो था वो मेरी परफॉर्मेंस को इनफैक्ट और वीक कर रहा था, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस को निगेट करना या निल पर लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
ओम
शांति. अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.